नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पूरे देश में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और मोबाइल वाणी द्वारा बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अनुप सर ने मोबाइल वाणी पर सभी 18 वर्ष से ऊपर सभी को कोविड का टीका लगाने की मोबाइल वाणी के द्वारा माध्यम से मांग की थी। आज हमारे साथ में मोबाइल वाणी पर गांधीवादी विचारक एवं लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल वाणी में स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार योगेश दादा।
सर, कैसे देख रहे हैं मोबाइल वाणी के द्वारा आपने जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जो आपने कहा था कि सभी को टीका लगना चाहिए कोविड का, सर तो कल इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी।
जी देखिए, 7 अप्रैल को आपके ही चैनल पे मोबाइल वाणी पे आपके जो समन्वयक है दिनकर जी, उन्होंने हमारा एक साक्षात्कार लिए थे
जी
और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस ही है, दिवस था तो उस दिन लिए थे साक्षात्कार। तो उसमें हम लोगों ने कहे थे, और उसके पूर्व में हम थोड़ा सा चले तो हम लोगों के जो नेता है आदरणीय रघु ठाकुर जी, जब वो पहला वैक्सीनेशन सागर में लिए थे तो उनका दूसरा डोज भी हो गया है, तो उन्होंने वहां से भी घोषणा किया था और शायद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसको बढ़ाया जाए, जो आप उम्र की सीमा तय किए है ये उम्र की सीमा को घटा करके 18 वर्ष से जो ऊपर वाले लोग हैं सभी को दिया जाए टीका, ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। आप देखिए कि जो कोरोना धीरे धीरे फरवरी माह से शुरू हुआ और अप्रैल में आते आते एकदम पीक पोजीशन पर अभी चल रहा है, तो इसको रोकने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये टीकाकरण। तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया, 7 अप्रैल को साक्षात्कार हुआ, इसमें भी हम लोगों ने बोले थे और तमाम संगठनों के, पूरे हिंदुस्तान के तमाम संगठनों के लोगों ने भी इसमें मांग किए थे। और उसके साथ साथ आप उसके पहले भी इंटरव्यू देखिए तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनकी भी यह डिमांड थी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी भी यह डिमांड थी कि टीकाकरण सभी के लिए कर दिया जाए। तो एक अच्छी पहल हुई, एक अच्छी चलन हुई और चारों तरफ से जब आवाज पहुंची तो आदरणीय जो केंद्र की सरकार है हमारी इस बात को स्वीकार की और उन्होंने आज घोषणा कर दी है कि 1 मई से जो 18 साल के उम्र के ज्यादा लोग हैं सभी को यह टीकाकरण किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा कोविड का, ताकि बचाया जा सके लोगों को और अधिक से अधिक लोगों में इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो टीका है इसको लगाया जा सके। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोबाइल वाणी को धन्यवाद कि मोबाइल वाणी लगातार इस पे काम की और एक सकारात्मक पहलू लेकर के आगे बढ़ी और उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है कि मोबाइल वाणी जितने भी जीवंत समस्याओं को उठा रही है, जनता के सवालों को उठा रही है, वह कहीं ना कहीं सवाल सरकार के सामने जा रहा है और सरकार उस पे काम करने का प्रयत्न कर रही है। तो हम अपने देश के सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जनता की आवाज को सुनी है और इस वैक्सीनेशन के क्षमता को समझते हुए कोरोना को कम करने के लिए सभी के लिए दरवाजा खोलने का काम किए।
जी सर, सर वर्तमान में जिस तरीके से 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोविड का टीका लगने
जी
वाला है, तो सर क्या
जी जी
इसके लिए सर कुछ अलग से कोविड सेंटर बनाने होंगे, ताकि उन्हीं में तो पॉसिबल नहीं है कि कोविड सेंटर में सभी लोग आकर एक जगह भीड़ इकट्ठा हो सकती है,
बिल्कुल
इसके लिए सर
जी।
कुछ
देख
कोविड सेंटर को
जी
बनाना चाहिए।
जी देखिए, बिल्कुल अभी देश भर में लगभग लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं कि 67,000 कोविड सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तो एक उम्र थी जो 45 साल से उम्र के लोग, ज्यादा के लोगों के लिए थी, लेकिन जब 1 मई से 18 साल से ज्यादा वालों के लिए हो जाएगी, खुली हो जाएगी, तो आपका बात सही है, आपका सवाल एकदम सही है कि भीड़ बढ़ेगी। तो उसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी तैयारी करना चाहिए, छोटे छोटे जो महानगर पालिका है, नगर पालिका है, उनको भी तैयारी करना चाहिए। ऐसे कि पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार पे ही छोड़ देना चाहिए, राज्य के सरकार पे ही छोड़ देना चाहिए। इसमें तो राज्य सरकार को भी चाहिए और जिला कलेक्टर को भी चाहिए कि पूरी तरीके से आगे आकर के इस वैक्सीनेशन के जो सेंटर है उसको बढ़ाया जाए। और हम लोगों की तो शुरू से मांग रही है कि इसको पंचायत स्तर तक लेकर के जाया जाए। अगर हर गांव में या 2-3 गांवों को मिलाकर के एक सेंटर बना दिया जाए तो आसानी से इस काम का सरलीकरण हो जाएगा और व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, वहाँ भीड़ भी नहीं लगेगी। हाँ, इसका टाइम भी बढ़ा दिया जाए, जैसे टाइम जो निर्धारित करके रखे हो लोग, वो टाइम को ओपन कर दिया जाए कि सुबह अगर 9 बजे से टीकाकरण चालू हो रहा है तो रात को 8 बजे तक ये चलाया जाए और एक टाइम टेबल सेट कर लिया जाए। और जो 67,000 सेंटर चल रहे हैं पूरे देश भर में, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो यह सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है जिला के कलेक्टरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपने जिला में सेंटरों को बढ़ाए, ताकि 18 साल से लेकर के जो उम्र के लोग हैं उनकी संख्या काफी है। आप देख लीजिए तो अपने देश में 54% युवा है, तो जब युवा जाएगा और युवा एक इसको उत्सव के रूप में ले रहा है और युवा निकलेगा घर से, हम लोगों को तो आशा है और हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है युवा इसके प्रति उत्सुक है और वो निकलेगा घर से टीकाकरण के लिए, तो भीड़ तो लाजमी है कि बढ़ेगी। आपका सवाल जेन्युइन है, आपकी चिंता सही है, तो सरकार और राज्य सरकारों को जिला प्रशासन को भी यह चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाए ताकि भीड़ को रोका जा सके और जो नारा है 2 गज दूरी उसको समन्वित किया जा सके, उसको समाहित किया जा सके।
सर इसमें ही मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे जिले में और कई क्षेत्रों में, तो सर इसमें जो कोविड सेंटर है वहां पर भी काफी युवा अगर पहुंचेंगे एक साथ तो सर संक्रमण बढ़ने के भी बहुत से चांसेस है, तो इसको लेकर प्रशासन ने किस तरीके कदम उठाने चाहिए ताकि इस संक्रमण को भी और युवाओं को भी इस कोविड टीका का लाभ मिले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, प्रशासन ने इस ओर क्या कदम उठाने चाहिए?
देखिए जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है आप देखिए तो अधिकांश जगह पे रातों को चल रहा है, दिन में वहीं पे लॉकडाउन है जहाँ पे खूब कोविड के केस दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं जगहों पे तो जिला प्रशासन मनमानी भी कर रहा है कि जानबूझ करके लगा दे रहे हैं वहाँ पे और पुलिस तो अपने बल का प्रयोग भी कर रही, जबकि ये नहीं होना चाहिए, यह महामारी है, इसमें सबको समझाने की जरूरत है। लाठीचार्ज कर देना या तानाशाही नीति अपना देना इससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। रही बात कि कोरोना कर्फ्यू में जो भीड़ लग जाएगी तो यह रात को है, लेकिन वैक्सीनेशन तो अपना दिन में होगा, तो इसीलिए मैं पहले ही सवाल में जवाब दे रहा था कि इसके लिए चाहिए कि हर पंचायत के स्तर पर कोविड सेंटर बढ़ा दिया जाए। अगर कोविड सेंटर हर पंचायत के स्तर पर हो गई ठीक है, गांव की अगर जनसंख्या 1600 है या 2000 है 2500 है जो भी हो, एक दिन में उतना वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, उतने वैक्सीनेशन नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, तो ठीक है उसकी संख्या कम कर ली जाए और मोहल्ले वाइज लोगों को एक बता दिया जाए, वार्ड के जो सदस्य हैं जो मेंबर है उनको बता दिया जाए भाई कल आपके वार्ड के लोगों को लगाया जाएगा, परसों आपके वार्ड के लोगों को लगाया जाएगा, उसके अगले दिन आपके वार्ड के लोगों को लगाया जाएगा, तो इस प्रकार से भीड़ को रोकी जा सकती है। और पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उन सेंटरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और वहाँ पे पूर्व तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि अगर भीड़ एकाएक आए तो उसको कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पे स्टाफ की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और वहाँ पे व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए ताकि उनको पानी की अगर प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था किया जाए, बैठने की उचित व्यवस्था कर दी जाएगी, अगर बैठने की उचित व्यवस्था हो जाएगी तो लोग आराम से वहाँ जाकर के बैठ जाएंगे। आज पब्लिक भी लोग भी जो है जागरूक है, वो नहीं चाह रहे भीड़ में जाना, तो अभी अपना समय एक सेट कर लेंगे, अगर दिन भर चलाया जाए वैक्सीनेशन तो लोग भी अपना समय सेट कर लेंगे और खुद ही वो चाह रहे हैं कि हम भीड़ भाड़ में न जाए, इस प्रकार से बचाया जा सकते हैं। हाँ जबकि जरूरी है कि जो प्रशासन है वो अलर्ट रहे, अलर्ट रहने का मतलब तानाशाह न बने, डंडा न चलाए, अलर्ट रहने का मतलब कि लोगों को सुविधा के अनुसार व्यवस्था की जाए।
जी सर, सर प्रदेश में इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही समस्याएं आ रही है और कई लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने से अपनी जिंदगी से भी हाथ धोए हैं, तो सर वर्तमान में भी कुछ ऐसी स्थिति कई जगहों पर देखी जा रही है, सर क्या कहना चाहोगे और क्या मांग करोगे कि सभी को ऑक्सीजन मिल सके?
देखिए हम लोगों की शुरू से मांग रही है और हम लोग इसको लेकर के आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में लड़ भी रहे हैं, हम लोग शुरू से मांग किए कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार की सूची में डाला जाए, जिस दिन यह मौलिक अधिकार की सूची में चला जाएगा उस दिन ये समस्याएं अपने आप हल होने लगेगी, क्योंकि वो वैधानिक हो जाएगा और वैधानिक हो जाएगा तो लोग न्यायालय का शरण लेने लगेंगे, तो न्यायालय का जब शरण लेने लगेंगे लोग तो यह जो काला बाजारी चल रहा है, चाहे रेमडिसिविर इंजेक्शन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन का कर लीजिए, तो इस पे रोक लग जाएगा, क्योंकि न्यायालय उसके जांच करेगा, न्यायालय उसकी देखरेख करेगा, तो कुछ सीमा तक उस पे रोक लगेगी। दूसरी जो बात है ऑक्सीजन की समस्या का, तो यह तो देश भर के चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल दिया है कि देश के जो हमारे नेता है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी भी हो, आज ही के नहीं पूर्व के सरकारों के भी, वो जो लंबा लंबा फेंकते आए हैं, जुमलेबाजी की राजनीति करते आए हैं, वो सामने आ रहा है कि आज तक इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर चिकित्सा व्यवस्था के लिए किए होते तो ये ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आती, तो यह पूरे जनता के सामने आ गया है कि हमारी सरकार जो हमारे द्वारा चुन करके दी गई है यह हमारी चिकित्सा के लिए क्या की है। सरकार को तो ये चाहिए था कि हम महामारी है तो महामारी में तमाम व्यवस्थाओं को बना करके रखे, लेकिन आजादी के 72 साल में सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर के इसका जवाब देना चाहिए सामने, और विपक्ष के लोगों को भी आकर के जवाब देना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आज देश के अंदर जो कालाबाजारी चल रही है आप देख लीजिए, उस कालाबाजारी को सरकार रोके, और कालाबाजारी हो रही है तो बिना सरकार के लोगों के मिले हुए कालाबाजारी नहीं हो सकती, बिना जिला प्रशासन के लोगों के मिले हुए कालाबाजारी नहीं हो सकती। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि अलर्ट रहे, और सरकार को चाहिए कि अधिकारियों पर दबाव बनाए कि भाई जहाँ पे कालाबाजारी हो रही है उनकी छापामारी की जाए। अगर कालाबाजारी को रोक लिया जाएगा तो ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी जो बात है कि हमारे देश में गरीब दमित जो कमजोर व्यक्ति है वो ऑक्सीजन एम्बुलेंस और बेड के अभाव में मर रहा है, और हमारे देश के आज के वर्तमान नेता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो वो रैलियां करने में व्यस्त है। भैया इनको हवाई जहाज कहाँ से उपलब्ध हो जाती है, भैया इनको सारी व्यवस्थाएं कहाँ से उपलब्ध हो जाती है। अगर ये लोग अपने आप में कटौती कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। चौथी बात जो है योगेश भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना है सबको कि आज देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, तमाम लोगों के वेतन में कटौतियां चालू हो गई है, लोगों के रोजगार धंधे बंद पड़े, लेकिन देश भर के विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान के संसद और राज्यसभा सदस्य, इन लोगों को किस आधार पर वेतन दिया जा रहा है? भैया संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया कि इनको वेतन दिया जाएगा? ठीक है इनको वेतन दिया जाए एक नामिनल की व्यवस्था के लिए, लेकिन पेंशन की व्यवस्था कहां पे की गई? संविधान में कहां लिखा है कि इनको पेंशन दिया जाए? तो यह तो एक बहुत बड़ी मात्रा में देश का पैसा इनके पास जा रहा है। अगर उन पैसों को रोक दिया जाता इस महामारी में तो ऑक्सीजन वेंटिलेटर और बेड और एम्बुलेंस की कमी नहीं होती, लेकिन सरकार उस पे नहीं जा रही है। अगर इसको लेकर के हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारा विषय नहीं है, संसद का विषय है। तो अब तो जनता को स्वतः जागना चाहिए कि आखिर इन लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में पेंशन क्यों दी जा रही है। यदि में पेंशन रुक जाएगी उस दिन देश के अंदर तमाम व्यवस्थाएं इन पैसों से की जा सकती है।
सर जिस तरीके से एक वर्ष पूर्व 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद देश में कुछ अगस्त में और अगस्त के बाद में जुलाई में कुछ केसेस कम हुए थे, शायद तब समय था कि सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन शायद
बिल्कुल बिल्कुल
मौका गवा दिया। सर क्या कहना चाहेंगे?
सरकार ने एकदम लापरवाही की है, और सरकार के साथ साथ जो देश भर के नौकरशाह है और देश भर के प्रशासनिक व्यवस्था है वो ज्यादा लापरवाही की है। आज आप देख लीजिए, आप तो पत्रकार है, आपको ज्यादा ही पता होगा कि आज देश को चला कौन रहा है? आज देश को हमारे संसद विधायक और मंत्री नहीं चला रहे, वो बस साइन कर रहे हैं। चलाने वाले कौन है? नौकरशाह है। यह नियम बना करके दे रहे, यह कायदे बना करके दे, ये फाइल बना करके देख रहे। और हमारे मंत्री आजकल इतने व्यस्त हो गए अपने कामों में, यानी उनके जो धंधे चल रहे हैं मंत्री लोगों के, नेता लोगों के, उसमें इतने वो मस्त हो गए कि वो फाइल को पढ़ते नहीं है, साइन कर देते। तो यह बामानी हुई बात है कि जब देश की सत्ता नौकरशाहों के हाथ में जाएगी तो कालाबाजारी लूटमारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। जनता से मतलब किसको है? हमारे प्रतिनिधि को है, लेकिन प्रतिनिधि हमारे उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जो अगस्त के बाद हमारा लॉकडाउन खुला था देश भर में, उसके बाद से लेकर के फरवरी तक देश भर की सरकारों ने खूब लापरवाही। अगर इन 7 महीनों में बैठ करके अच्छे से तैयारी की होती, कुछ लोगों से सलाह ली होती, कुछ डॉक्टरों की टीम बना करके उनसे सलाह ली होती, कुछ समस्याओं को बैठा करके सलाह ली होती, कुछ लोगों को बैठाई होती, तो यह नौबत नहीं आती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के समस्या को जानता है। लेकिन सरकार ने उनसे बात करने के प्रयत्न नहीं किया, सरकार नौकरशाहों के भरोसे रही, और नौकरशाहों की लापरवाही की देन है कि आज देश पुनः लॉकडाउन के तरफ, पुनः कोरोना से पीड़ित हो रहा है।
जी सर, 1 मई से कोविड का टीका लगने वाला है 18 वर्ष से अधिक लोगों को। सर क्या संदेश देना चाहोगे इस टीके?
यह बहुत बढ़िया है, इसमें तो मैं खुद उत्सुक हो रहा हूँ। जब 45 साल का उम्र निर्धारित किया गया था योगेश भाई, तो आप नहीं मानेंगे, मैं 2-3 बार गया वैक्सीनेशन सेंटरों पे, और मैं डॉक्टरों से बोला कि भाई हमको इंजेक्शन लगा दीजिए, तो लोग हमारा आधार कार्ड मांग लेते थे, बोलते आपका उम्र नहीं हुआ है सर, अभी जब होगा तो हम लगा लेंगे। तो मैं खुद उत्सुक हूँ कि जिस दिन से शुरू हो उस दिन मैं जाकर के लगवा लूँ, और मैं तो अपने घर के जो हमारे 45 साल से ऊपर वाले सबको लगवा दिया हूँ, और मैं तो अपने दोस्तों से भी मैसेज भी डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ कि हम सब लोग एक साथ में चल करके लगाएंगे, तो हमारे दोस्त तो रेडी है। और युवाओं में उत्साह है, युवा इसको उत्सव के रूप में लेंगे। आप देखिएगा जब 1 मई से शुरू होगा तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर बहुत भीड़ होगी और लोग लेंगे, और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप खुल करके जाइए और वैक्सीनेशन कराइए, ताकि हम इस कोरोना को जिताए और हम पुनः अपने भारत को विश्व विजेता और महान बनाए।
जी तो ये थे अनुप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर बीते दिनों देश में महामारी के दौरान 18 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए मोबाइल वाणी के माध्यम से संदेश दिया था और इन्होंने आज इसको एक सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इसके साथ में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन किस तरीके के कदम उठाए और लोगों को भी एक कोरोना गाइडलाइन के तहत कोविड सेंटर पर पहुंचा जाए। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई कि आप लोग हर समय सहयोग कर रहे हैं और इसका समय दे रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता को जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोबाइल वाणी को तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रगुजार हूँ। इस महामारी में मोबाइल वाणी एक बहुत बढ़िया काम कर रही है जो पत्रकार लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई
जी। छिंदवाड़ा से आपका दोस्त योगेश।